बिहारी गोपी चन वल्लभ गिरी वरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी चन वल्लभ गिरी वरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी चन वल्लभ गिरि वर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी चन वल्लभ गिरि वर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी चन वल्लभ गिरि वर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी चन वल्लभ गिरि वर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यशोदा नंदन यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी चन वल्लभ गिरि वर धारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी चन वल्लभ गिरि वर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यशोदा नंदन यमुना तीरवन चारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। तो रविवार के श्रीमद् भागवत कथा के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। प्रो यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी? ओके, गुड। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद चौथा अध्याय 24वां और श्लोक क्रमांक 53वां। तो यहाँ श्लोक शायद नहीं है, लिखा हुआ है, तो हम लोग श्लोक को पढ़ेंगे। एतद् रूपम अनुध्येयम् अच्छा, आप पढ़ पाएंगे? अच्छा, सब लोगों के पास नहीं है तो इसलिए मैं सोचा मैं ही पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मुश्किल होगा, है ना। एतद् रूपम अनुध्येयम् आत्मशुद्धिम् अभीप्सिताम् यद्भक्ति योग्यो अभ्युदय सधर्मम् अनुतिष्ठिताम्। एतद् रूपम् अनुध्येयम् आत्मशुद्धिम् अभीप्सिताम् यद्भक्तियोगो अभयद्य स्वधर्मम् अनुतिष्ठिताम्। एतद् रूपम् अनुध्येयम् आत्मशुद्धिम् अभीप्सिताम् यद्भक्तियोगो अभयद्य स्वधर्मम् अनुतिष्ठितम्। ट्रांसलेशन, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा अनुवाद और बाद में उसका हम हिंदी में रूपांतरण करेंगे। तो यहाँ इस 53वें श्लोक में भगवान शंकर प्रचेताओं को जो है उपदेश दे रहे हैं, उस संदर्भ में ये अध्याय चल रहा है। chanting the song sung by Lord Shiva. Bhagwan Shankar ke dwara gaya gaya geet jo ki prachetaon ko unhone sunaya tha us sandarbh mein ye 53va shlok hai. My dear Lord, those who desire to purify their existence must always engage in meditation upon your lotus feet as described above. Those who are serious about executing their occupational duties and who want freedom from fear must take to this process of bhakti yoga. So, yahan Bhagwan Shankar is shlok mein keh rahe hain, hey priya Bhagwan, जो भी व्यक्ति अपना शुद्धिकरण चाहते हैं उन्हें हमेशा आपके चरणों पर ध्यान करना चाहिए, जिस प्रकार की मैंने पूर्व के श्लोकों में कहा. तो ये इस संदर्भ में पूर्व के श्लोकों में, इससे पूर्व के 8-10 श्लोकों में बड़ा सुंदर भगवान के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं भगवान शंकर. और इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अपने पूर्ण जो है शुद्धिकरण चाहता है उसे उन भगवान के चरणों पर ध्यान करना चाहिए. तो ये ध्यान के विषय में भगवान शंकर कह रहे हैं, एतद् रूपम अनुध्येयम्, जिसको भी जो है ध्यान करना है. और फिर आगे इस श्लोक में कहा गया, दोज हु आर सीरियस अबाउट एग्जीक्यूटिंग देयर ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज एंड हु वांट फ्रीडम फ्रॉम फियर मस्ट टेक टू दिस प्रोसेस ऑफ भक्ति योग. और जो भी व्यक्ति गंभीरता पूर्वक अपने निर्देशित कार्य करना चाहते हैं और क्या बोलते हैं फ्रीडम फ्रॉम फियर, अभय प्रदान करना चाहते हैं अपने जीवन में, भय से ऊपर उठना चाहते हैं, उन्हें भी भक्ति मार्ग में संलग्न होना चाहिए. धन्यवाद. ये तो बहुत सरल हो गया, अभी काम हिंदी में आ गया. थैंक यू प्रभु. या हे भगवान, जो लोग अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त विधि से आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, और जो अपने वर्ण के अनुरूप कार्य को पूरा करने की धुन में हैं, जो करना चाहते हैं, और जो भय से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें भक्ति योग की इसी विधि का अनुसरण करना चाहिए. तात्पर्य कहा गया है कि श्री भगवान का दिव्य नाम, स्वरूप, लीलाएं तथा उनके संगी गणों को मंद इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता, अतः इन इंद्रियों को शुद्ध करने हेतु मनुष्य को भक्ति करनी होती है जिससे वह श्री भगवान के दर्शन कर सके. किंतु यहां पर यह बताया गया है कि जो श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं उनकी इंद्रियां निश्चय ही भौतिक कल्मशों से पवित्र हो जाती हैं और वे श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं. इस युग में सामान्य लोगों के बीच ध्यान शब्द अत्यंत लोकप्रिय है. मेडिटेशन, प्रभुपाद उस समय ये लिख रहे हैं, आजकल तो और बड़ा वेव चल रहा है मेडिटेशन. पाश्चात्य देशों में भी सब लोग मेडिटेशन सेंटर खोल रहे हैं. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस समय के सामान्य लोगों के बीच ध्यान शब्द अत्यंत लोकप्रिय है. ध्यान करना चाहिए, सबकी इच्छा होती है ध्यान करना चाहिए. तो यहाँ किंतु वे इसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझते. किंतु वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि योगी जन श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं. ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है. योगियों का यही वास्तविक कार्य है भगवान श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना. अतः भगवान शंकर, भगवान शिव परामर्श देते हैं कि जो वास्तव में परिशुद्ध होना चाहते हैं, जय श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, तो जो लोग विशुद्ध होना चाहते हैं, परिशुद्ध होना चाहते हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं उन्हें इस प्रकार के ध्यान में या योग में लगना चाहिए, जिससे ना केवल अंतःकरण में श्री भगवान का निरंतर दर्शन किया जा सकता है, वरन साक्षात उनका दर्शन हो सकता है और वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में उनका पार्षद बना जा सकता है। वाह। स्वधर्म शब्द की व्याख्या करते हैं प्रभुपाद, यहां कहते हैं अर्थ यथा स्वधर्म अनुष्ठिताम में, शब्द सूचित करता है कि यदि जीवन में सचमुच सुरक्षा चाहिए तो वर्णाश्रम धर्म, जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के वृत्ति परक कार्यों को द्योतक है और जो मानवता के लिए उपयुक्त व्यवस्था है, उसके साथ साथ भक्ति योग ग्रहण करना चाहिए। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के कर्मों को करने या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्यासी का कर्तव्य पूरा कर लेने से ही वे निर्भय हो जाते हैं या उन्हें निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, किंतु वस्तुतः जब तक इन सारे कर्मों को भक्ति योग के साथ साथ संपन्न नहीं किया जाता तब तक कोई निर्भय नहीं बन सकता, तो भक्ति योग अनिवार्य है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग आदि के वर्णन मिलते हैं, किंतु जब तक मनुष्य भक्ति योग तक नहीं पहुंचता तब तक अन्य सारे योग जीवन सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। दूसरे शब्दों में भक्ति योग ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। श्री चैतन्य चरितामृत में भी श्री भगवान चैतन्य तथा रामानंद राय के मध्य इस जगत से मोक्ष प्राप्त करने के संबंध में जो वार्ता है उसमें भी यही निष्कर्ष निकलता है। उस वार्ता में रामानंद राय जी ने वर्णाश्रम धर्म के पालन का प्रसंग उठाया तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इंगित किया कि वर्णाश्रम धर्म केवल बाह्य है। भगवान श्री चैतन्य रामानंद राय को यह दिखाना चाहते हैं कि अकेले वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों के पालन से मोक्ष की कोई सुनिश्चितता नहीं है। अंत में रामानंद राय ने भक्ति योग का उल्लेख किया, स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवा मनोभी, भागवत के दशम स्कंद के 14वें अध्याय के 3रे श्लोक जो ब्रह्मा जी की स्तुति है उसमें कहा है कि मनुष्य चाहे किस अवस्था में रहे यदि वह भक्ति योग करता है जिसका शुभ आरंभ भक्तों के मुख से श्री भगवान के दिव्य संदेश को सुनने श्रुतिगताम से होता है तो वह क्रमशः अजय ईश्वर को जीत लेता है। भगवान जो अजय हैं, भगवान का एक नाम है अजित, ईश्वर का अजय, ईश्वर को अजय माना जाता है, किंतु जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध पुरुषों की वाणी को विनय पूर्वक सुनता है वह अजय को जीत लेता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मनुष्य को केवल वर्णाश्रम धर्म का ही पालन नहीं करना चाहिए अपितु किसी स्वरूप सिद्ध पुरुष से सुनना आरंभ करके भक्ति योग में भी लगना चाहिए। इस विधि से भक्त अजय श्री भगवान को जीत सकेगा और इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद उनका पार्षद बनेगा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukham karoti vachalam, pangum langayate girim, yad kripa tamaham vande, Shri Guru Dinatharinam. हरे कृष्णा. तो यहाँ बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का 24वां अध्याय, भगवान शंकर द्वारा की गई स्तुति का गान. तो ये बड़ा सुंदर गीत है जिसका यहाँ पर गान किया जा रहा है. इससे पूर्व के श्लोकों में भगवान शंकर ने भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन किया, भगवान के सुंदर नेत्रों का, सुंदर पूरे रूप का वर्णन के करने के पश्चात इस श्लोक में जो है भगवान शंकर हम सबको प्रेरित कर रहे हैं. प्रचेताओं को उपदेश देने के माध्यम से हम सबको भगवान प्रेरित कर रहे हैं कि हे भगवान, जो लोग अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं, अर्थात जो अपने जीवन का शुद्धिकरण चाहते हैं, तो हम में से सब लोग चाहते हैं अपने जीवन का शुद्धिकरण. जो लोग नहीं चाहते वो लोग इस क्लास में ना बैठें, क्योंकि ये क्लास में मतलब भगवान शंकर कह रहे हैं उन लोगों के लिए जो अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं. तो उनके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भगवान शंकर बता रहे हैं. वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शंकर तो परम वैष्णव हैं और उनका जो है शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े ध्यानपूर्वक हमें लेना चाहिए. तो उन्होंने कहा है कि उन्हें उपर्युक्त विधि से आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए. तो सरल तरीका बता दिया. हम हर कोई शुद्ध होना चाहता है, इसीलिए हम भक्ति के मार्ग में आए हैं अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए. तो यहाँ भगवान शंकर कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप लोग आ गए, चरण कमलों का भगवान का ध्यान करिए. और साथ ही साथ आगे कह रहे हैं जो अपने वर्ण के अनुरूप कार्य को पूरा करने की धुन में है, अर्थात जो कोई भी अपने कार्य में लगा हुआ है वर्णाश्रम के माध्यम से, सर्वोपरि है वर्णाश्रम के माध्यम से, लेकिन कलयुग में प्रमुखतः प्रायतः लोगों को अपना वर्ण और आश्रम के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो उसके अनुरूप कार्य में संलग्न होना और कठिन है. लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो कि इस धुन में भी लगा है कि हमें वर्णाश्रम के द्वारा ही कार्य करना है, अच्छी बात है यदि कोई कर सके, जो समझ सके इस बात को. लेकिन फिर भी यदि वह भी भय से मुक्त होना चाहता है, तो हम सब भी भय से तो मुक्त होना ही चाहते हैं, अंधकार अज्ञान, क्योंकि भय अर्थात क्यों होता है हमें, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता आगे क्या होने वाला होता है. नहीं, इसीलिए लोग ज्योतिषियों के पास जाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आगे जीवन में क्या होगा. हम लोग भी कई बार ट्रैवल करते हैं तो प्रमुखतः पता नहीं उत्तर भारत में मेरा ऐसा अनुभव रहा है, लोग इस पोशाक को देखते हैं तो उनको लगता है ये पंडित जी होंगे, कुछ तो भविष्य के बारे में, ये अज्ञान की वजह से भय होता है. तो व्यक्ति जानना चाहता है कि मेरे आगे के जीवन में क्या होगा. नहीं, यहाँ पर तो हमने ऐसा अनुभव किया है कि कहीं जाते थे पंडित जी आपको कुछ हाथ देखना आता है, मेरा आगे क्या होने वाला है, कुछ थोड़ा बता सकते हैं क्या. तो इस प्रकार से इस भय से भी यदि हम मुक्त होना चाहते हैं, तो उन्हें भगवान शंकर कह रहे हैं भक्ति योग की इस विधि का अनुसरण करना चाहिए. तो ये विधि का मार्ग यदि हम अनुसरण करें कि भगवान के चरण कमल का ध्यान करें, भगवान के चरण कमलों की कृपा को प्राप्त करें, तो हम अपने इस जीवन में जो भय संतृप्त हैं, भय इस क्या बोलते हैं पूरे इस समाज में क्या घुला मिला हुआ है, भय इज ऑल प्रवेडिंग इन दिस वर्ल्ड. तो हर क्षण हर परिस्थिति में भय है हम सबके मन में, हृदय में भय छुपा है कहीं ना कहीं. कितना भी कोई अपने आप को बहादुर क्यों ना कह ले, नहीं, सबको मृत्यु का भय या कुछ आपत्ति का, कुछ विपत्ति का, कुछ ना कुछ हम सबके भय से हम संतृप्त हैं. तो यहाँ पर भगवान शंकर कह रहे हैं कोई बात नहीं, भय है, अपने वर्ण के अनुसार यदि आप कार्य करना चाहते हैं, आश्रम के अनुसार भी कार्य करना चाहते हैं, करते रहिए, लेकिन साथ ही साथ सर्वोपरि है इस भय से दूर होने के लिए भक्ति का आश्रय लेना. और प्रभुपाद तात्पर्य में बड़ा सुंदर तात्पर्य में शुरू में व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि भगवान का दिव्य नाम स्वरूप लीलाएं ये हम मंद इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझ सकते, ना ही देख पाते हैं। तो इसलिए अत्यंत आवश्यक है जो है हृदय का शुद्धिकरण किया जाए, तभी हम भगवान की सुंदर लीलाओं का, सुंदर नामों का, सुंदर रूपों का भी हम जो वास्तव में अनुभव कर पाएंगे। अन्यथा इन अंग्रेजी में प्रभुपाद लिखते हैं ब्लंट सेंसेस, अर्थात जो हमारी इंद्रिय हैं इस समय वो क्या कहते हैं मंद हैं, और उससे हम भगवान के गुण रूप लीला नाम का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हम दर्शन कर रहे हैं भगवान का, आज भी श्री वृंदावन बिहारी श्रीमान महाप्रभु यहाँ दर्शन करने के लिए हम सबको कृपा प्रदान करने के लिए यहाँ खड़े हैं, लेकिन उनके दर्शन करते हुए भी हम दर्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि यदि वास्तव में हम भगवान का दर्शन कर रहे होते, अनुभव कर रहे होते, तो हमारा अनुभव उन भक्तों के समान होता जो पूर्णतः शुद्ध हैं, जैसे श्री गोपीगण या अन्य जो भक्त हैं, जब वह भगवान का दर्शन करते हैं उनके जो हृदय में जो उल्लास का अनुभव होता है, जो उत्साह का अनुभव होता है, जो एक क्या बोलते हैं उन्माद उत्पन्न होता है, वो हमारे अंदर भी उत्पन्न होता। यहाँ तक कि गोपीगण तो हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी से भी शिकायत करने लग जाती हैं कि भाई आपने तो ये ऐसी हमारी आँखें बना दी कि हम पलक झपकते समय भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को हम जो है सहन नहीं कर पा रही, उस विरह को भी। हम लोग तो इतनी बार पलक झपकते हैं पता भी नहीं चलता है, कथा में कई बार ज़्यादा बार होता है लेकिन पता भी नहीं चलता है भगवान का दर्शन करने में जो विघ्न आता है उसमें। लेकिन गोपी गणों का तो ये भाव, जब तक हमारा पूर्ण जो है शुद्धिकरण नहीं होता तब तक ये भाव हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। महाप्रभु तो कहा करते थे कि ब्रह्मा जी ये गलती हो गई आपको, जो लोग कृष्ण को देखते हैं कम से कम उनको तो लाखों करोड़ों आंखें दे देनी चाहिए, बाकी लोगों को तो छोड़ दो, बोलो चलो जो कृष्ण का दर्शन नहीं करते उनको दो आंख भी ले लेनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, लेकिन कहने का भाव है कि वास्तव में वो आंखें होकर भी भागवत कहता है कि क्या है वो, नहीं जो आंखें भगवान का दर्शन नहीं करती वो आंखें क्या है, हाँ अंधे के समान ही है, ये वास्तविक चीज जो देखने वाली है उसका वो दर्शन नहीं कर रहे, तो इससे अच्छा आंखें ना ही हो। ऐसे ऐसा हमें किसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बट सिद्धांत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यक्ति अंधा ही है जो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर रहा है, श्री विष्णु श्री हरि का दर्शन की लालसा नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है, दर्शन नहीं करता है। और महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को लाखों आंखें दे देनी चाहिए। और रूप गोस्वामी फात तो कहते हैं कि नाम जप में हमें इतने करोड़ों कान दे दीजिए ताकि मैं कृष्ण का नाम श्रवण करता रहूं, सुनता रहूं। हम लोगों को लगता है कि 16 कान हो जाएंगे, 32 कान हो जाएंगे, तो 16 माला एक बार सब जगह से सुन लिया तो फटाफट हो जाएगा 16 माला, या जितना भी माला हम कर रहे हैं। तो ये जो है प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि जो धीरे धीरे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो निर्भगवान के चरण कमल का निरंतर ध्यान करते हैं उनकी इंद्रियां निश्चय ही भौतिक कलमों से पवित्र हो जाती हैं। तो जैसे ही जैसे हमारा इस भक्ति के मार्ग में हम लगे रहेंगे, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते रहेंगे, चरण कमलों का ध्यान का एक अर्थ ये भी है कि उनकी सेवा में जब हम संलग्न रहेंगे, उनके द्वारा दिए गए आदेशों का जब हम पालन करेंगे, जब हम अपने गुरुजनों के आदेशों का पालन करेंगे, तब हमारा जो है धीरे 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 जो है जो इंद्रिय जो मंद इंद्रियां हैं अभी वह तीव्र हो जाएंगी, तब हम वास्तव में भगवान के गुण रूप लीला इत्यादि का अपने जीवन में हम अनुभव कर पाएंगे। तत्पश्चात सभी इंद्रियां हमारी एक तरह से मंद हैं। तत्पश्चात श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ पर शब्द आया है स्वधर्मम, कि जो व्यक्ति तात्पर्य में प्रभुपाद अनुवाद करते हैं कि जो व्यक्ति अपने वर्ण के अनुरूप कार्य करने में भी धुन है, जो लगा हुआ है कि अपनी ड्यूटी करनी है, जो भी मेरा वर्ण आश्रम के अनुसार जो भी मेरा कार्य निर्धारित है, यदि उसके द्वारा भी लगा हुआ है किंतु यदि उसके साथ भी यदि वह करते हुए भी, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्मों को या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास के कर्तव्य पूरा करने लेना है, लेकिन वह भी यदि निर्भय होना चाहता है तो उसे भी भगवान के भक्ति योग में संलग्न होना चाहिए, होना पड़ेगा, तभी वह वास्तव से भय निर्मूलन तभी संभव है जब हम भगवत भक्ति में संलग्न हों। अन्यथा ये हृदय के कलमशों और भय से मुक्ति संभव नहीं है। तो ये बड़ा सुंदर सिद्धांत। और अंततः श्री प्रभुपाद ब्रह्मा जी की सुंदर प्रार्थनाओं को यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि स्थाने स्थित श्रुतिगता तनुवा मनो भी, कि चाहे मनुष्य चाहे किस अवस्था में भी क्यों ना रहे, यदि वह भक्ति योग करता है, प्रभुपाद कहते हैं जिसका शुभ आरंभ कहाँ से होता है, श्रुतिगता, दिव्य भगवान के संदेशों को सुनने से। तो ये कानों के माध्यम से हम भगवत धाम जा सकते हैं, केवल श्रवण मात्र से। वह क्रमशः, प्रभुपाद कहते हैं, वह क्रमशः अजय ईश्वर को जीत लेता है। तो केवल भगवान का यशगान, भगवान का आदेश, उनके गुणों को श्रवण करने से जो भगवान अजित हैं, जिनको जीता नहीं जा सकता, अनकॉन्करेबल है भगवान, अजित है भगवान, हर कोई जीतना चाहता है, वी वॉन्ट टू बिकम, सबको, सब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को हराना चाहते हैं, हम सबसे अजय बनना चाहते हैं। कितने लोग अपना नाम रखते हैं अजय, सबसे विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन भगवान का नाम एक अजित है, अजय है, अर्थात उनको कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई क्या बोलते हैं आज क्या होता है वो WWF या ई जो भी होता है, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का टॉपर या सबसे बुद्धिमान व्यक्ति या कोई भी किसी भी जो है व्यक्ति, कोई कितना भी प्रवीण क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ज्ञान से या बुद्धि से या अपने शारीरिक सौष्ठव से, बल से, कितना भी शक्तिशाली हो, भगवान को परास्त नहीं कर सकते, अजित हैं भगवान। लेकिन इसमें श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक लूप होल है, भगवान के अजित शब्द में भी स्टार मार्क्ड है। अरे ये क्या है स्टार मार्क, नहीं शब्द होता है ना, जब भी कहीं भी कुछ एडवर्टाइजमेंट देखें तो एक स्टार मार्क लगा रहता है, कुछ हाँ कंडीशंस अप्लाई। तो ये भगवान भी अजित हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशंस अप्लाई का नोट लगा हुआ है कि जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग में लगा है, जो केवल शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से भगवान का यशगान कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, भगवान के चरण का ध्यान कर रहा है, वह उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वह भगवान को भी जीत लेता है। तो ये बड़ा सरल मार्ग है सबसे शक्तिशाली बनने का, हम सबकी इच्छा होती है सबसे शक्तिशाली बने, वी वॉन्ट टू बिकम द मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी, नहीं सबकी इच्छा होती है हम बिल्कुल सबसे शक्तिशाली बने। तो सबसे सरल मार्ग श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, रोज जिम जाने की जरूरत नहीं, जिम नहीं सॉरी, रोज श्रवण करने की आवश्यकता है, नहीं शक्तिशाली बनने के लिए रोज श्रवण करना है, डंबल्स उठाते हैं ना क्या शक्तिशाली बनने के लिए, वैसे ही रोज यहाँ से कानों से डंबल्स, कानों के अंदर घुसाना है हमें भगवान के नाम को, भगवान की लीला को, गुण को, रूप को, हर चरणों का ध्यान करना है, उनकी सेवा करनी है, तब हम देखेंगे हम एकदम धीरे धीरे एकदम शक्तिशाली बनते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे जैसे वो मंद इंद्रियाँ होती हैं वो पूरी एकदम तीव्र हो जाएंगी, ब्लंट सेंसेस विल बिकम मोस्ट पावरफुल एंड वी विल बी एबल टू, हम लोग अजित को भी नियंत्रण में ले आएंगे। ऑफ कोर्स वो कोई एक भौतिक नियंत्रण नहीं है कि भगवान को वश में कर लिया और भगवान हमारी सुनेंगे, नहीं, भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं, तो ये प्रेम के बंधन में भगवान बंध जाते हैं। तो बड़ा सुंदर इस श्लोक में भगवान शंकर यह हम सबको उपदेश दे रहे हैं कि हम सबको भगवत भक्ति में संलग्न होना चाहिए, भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, तब हम वास्तव में जो है भय से मुक्त हो पाएंगे। यद नहीं एतद रूपम अनुधेयम आत्मशुद्धिम अभिस्पिताम, जो लोग आत्मशुद्धि चाहते हैं, यत भक्ति योग अभय दह, तो ये जब भक्ति योग में हम होंगे तब अभय दह, तब हम निर्भयता को प्राप्त करेंगे अपने जीवन में, भगवान के सुंदर चरण कमलों का ध्यान करने से। तो इसके साथ हम अभी भगवान की एक सुंदर संक्षिप्त में लीला पर चर्चा करेंगे, जिसमें श्री भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पे ध्यान करने पर महत्व दिया गया। भगवान बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल्य लीलाओं सबको आकर्षित करने के लिए ही भगवान लीलाएं करते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य यही है, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करना और उनको आकर्षित करना इन लीलाओं के माध्यम से। और साथ ही साथ जब भक्त लोग इन लीलाओं पर अपना तात्पर्य देते हैं, जब व्याख्या करते हैं, टिप्पणी देते हैं, तब हम उससे बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं समझ सकते हैं कि जिसका पालन करके जो है हमारा पूर्ण जो है क्या बोलते हैं एग्जिस्टेंस पूर्ण हमारी जो है शुद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण गोचारण लीला करते थे, गायों की लीला, गायें चराने की जब लीला करते थे, तो बड़ा देखिए भगवान के पास, भगवान कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते थे, नहीं ऐसा कुछ ये नहीं था कि भगवान के पास कुछ कमी थी, नहीं, भगवान अवतरित होते हैं लीला करने के लिए तो भगवान के पास अनेक, भगवान राजा भी, बाद में राजा भी बने, लेकिन प्रमुखतः प्रायतः जो उनकी सबसे प्रिय लीला रही वो गोचारण की लीला रही। भगवान को गायें बहुत ही प्रिय हैं, उनकी देखभाल करना, उनकी सेवा करना, तो ये भगवान का प्रिय ऑक्यूपेशन, सबका अपना अपना कुछ होता है, भाई मेरा ये ड्रीम है, मैं ये ऑक्यूपेशन, मेरे को इस प्रकार की जॉब मिल जाए, इस प्रकार का कार्य करने को मिले, लेकिन भगवान का प्रिय ऑक्यूपेशन, प्रिय कार्य है गौ माता की सेवा करना। और तो उसी संदर्भ में एक बार का प्रसंग है, ये जब करीब भगवान छः वर्ष कुछ महीने के थे तब का ये प्रसंग है, और गर्मी का दिन है तो ब्रज में तो कई बार बहुत गर्मी हो जाती है, तो वहाँ पर गोप और सब गायों को बहुत प्यास लग गई, और तो भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर जा रहे थे। श्री यमुना जी में एक हृदय था, एक तालाब था, एक लेक थी, जहाँ पर जो है इस प्यास की जो है निवारण करने के लिए। और हालांकि प्रायः भक्त लोग भगवान के जो ग्वाल भाल थे श्री कृष्ण के साथ ही प्रसाद लिया करते थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ ही जो भी करते थे, खेलना कूदना कृष्ण के साथ ही करना। लेकिन इस बार आचार्यगण व्याख्या करते हैं कि भगवान की लीला के अनुसार भगवान कुछ लीला करना चाहते थे, तो उनको कुछ अधिक प्यास लगी, तो सब लोग ग्वाल भाल सब आगे चले गए और सब गायें भी एक साथ आगे चल गए। अभी गर्मी में जब प्यास लगी, इतनी प्यास लगी थी कि सब लोग एक साथ आगे चले गए उस हृदय की तरफ, देखा नहीं कि क्या है, अभी इतना प्यास लगी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जा रहे हैं, तुरंत वहां पर पहुंच गए, सबने एक साथ जल का पान कर लिया, सबने एक साथ जल का पान कर लिया। और जैसे ही जल का एक बूंद अंदर गया, तो जिस प्रकार से वो पोटेशियम साइनाइड काम करता है, वैसे ही एकदम तुरंत उसको स्पर्श करते ही सब वहीं तुरंत बेहोश हो गए, एक क्षण में तुरंत बेहोश हो गया। गायें भी जो गई थी वहां पर, जिन्होंने भी स्पर्श किया जल को, वह तुरंत वहीं पर बेहोश हो गए। और भगवान, हालांकि भगवान की दिव्य दृष्टि पड़ते ही सब पुनः जागृत हो गए, भगवान की दिव्य दृष्टि। और एक आचार्य तो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान अपने आप को सब रूपों में, जितने ग्वाल बाल थे, गायें बछड़े थे, उतने रूपों में विस्तारित करके सबको आलिंगन किए, और उनके अश्रु से जो है, अश्रु की जब नेत्रों से अश्रु धारा बही, जब वह धारा का स्पर्श हुआ तब सब वह ग्वाल बाल उठ खड़े हो गए। भगवान के अश्रु धारा, भगवान का जो प्रेम था उन ग्वाल बालों के प्रति, उसके स्पर्श से ही वह तुरंत वहीं खड़े हो गए। तो यह मतलब महाराज श्रीला राधानाथ महाराज जब इस प्रसंग पे 2019 में बड़ा एक सुंदर, उन्होंने वृंदावन यात्रा में बड़ा विस्तार से करीब 2.5 घंटे से इस प्रसंग में चर्चा की थी, और बहुत ही सुंदर वो कथा थी। जिन लोगों ने नहीं सुना, जो उस यात्रा में नहीं थे, मेरा अनुरोध है इस कथा को अवश्य सुने, प्रभु जी ने तो कई बार सुना है, लेकिन उस प्रसंग में महाराज जी बहुत, 2-2.5 घंटे का वो कथा है, बहुत सुंदर खालिया के विषय में बड़े विस्तार से बताते हैं, और किस प्रकार से उस व्याख्या करते हैं। इस संदर्भ में महाराज श्री बताते हैं कि तृष्णा अर्थात प्यास कई बार हमें फंसा देती है, भक्त के जीवन में भी ध्यान रखना चाहिए। महाराज श्री उदाहरण देते हैं कि परीक्षित महाराज, हालांकि उनको भगवान श्री कृष्ण ने उनके माँ के गर्भ में आके उनकी रक्षा की थी, लेकिन जब बहुत तीव्र प्यास लगी तो उन्होंने भी एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया था। हालांकि वो भी भगवान की लीला थी, लेकिन उसका ही नतीजा कि आज हम यहाँ बैठ के भागवत श्रवण कर रहे हैं, वो प्यास का नतीजा। भक्तों की प्यास भी बड़ी दिव्य होती है, नहीं उस प्यास के माध्यम से आज यहाँ भागवत पे चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो हम शायद पता नहीं क्या कर रहे होते। तो हाँ, भागवत का जो है प्राकट्य उस प्यास के कारण हुआ। वो पांडवों की में भी एक प्रसंग आता है जब वो एक सबको पांडवों को बहुत प्यास लगी होती है और एक जलाशय में जाते हैं और एक एक करके जाते हैं और सब बेहोश हो जाते हैं युधिष्ठिर महाराज को छोड़कर। उसी प्रकार से हम सबके जीवन में भी प्यास अर्थात तृष्णाएँ हैं बहुत, सबके जीवन में हम कुछ हम चाहते हैं, है ना, हमारे सबके जीवन में है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये मिल जाए, ऐसा संबंध हो जाए, या कुछ भक्ति में आर्ग में आने के बावजूद भी ये इंद्र तृप्ति, इंद्रियों को तृप्त करने की तृष्णाएं हम सब में व्याप्त हैं, स्थूल या फिर सूक्ष्म। स्थूल रूप में अर्थात आँखों का, नाक, कान, जिह्वा, संभोग इत्यादि, और सूक्ष्म रूप में भी सम्मान की इच्छा इत्यादि हम सबको प्रताड़ित करती रहती है। ये सब तृष्णाएं हम सबके हृदय में व्याप्त हैं। और ये तृष्णाएं क्यों हैं हम सबके मन में? क्योंकि वास्तव में हम सच्चिदानंद हैं, आनंद स्वरूप हैं हम सब, तो ये स्वाभाविक है। ये एक आनंद, मतलब हमारा मूलभूत स्वरूप ही है आनंद का अनुभव करना। परंतु इस आनंद को कहाँ प्राप्त करना, वह भूलकर जब हम इन भौतिक वस्तुओं में, भौतिक स्थानों में, भौतिक संबंधों में जब इस आनंद की प्राप्ति करने के लिए लग जाते हैं, तब वहां गलती हो जाती है हमसे। तो भागवत बताता है कि यदि जब हम अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करते हैं, तब ये आत्मा सुप्रसिद्धि, तब हम वास्तव में जो है सुप्रसिद्धि दिव्य आनंद का अनुभव कर पाएंगे। तो बड़ा शास्त्र बड़ा ही बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, एकदम क्लैरिटी के साथ बात करते हैं, बिल्कुल स्पष्टता के साथ बात करते हैं। पूरी दुनिया लगी हुई है कैसे खुश हो जाए, नहीं पूरी दुनिया अनेकों अनेकों प्रकार प्रयास, प्रकल्प, विकल्प लगी हुई है, अथक परिश्रम में लगी हुई है, सबका एक ही ध्येय है कैसे हम खुश हो जाएं। बड़ा गाड़ी से, बड़े बंगले से लेके, बड़ी फैसिलिटीज से लेके, अलग सरकार से लेके, अलग अनेक विकल्प प्रयास अनेकों लगे हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग लगे हुए हैं, अरबों लोग, प्रमुखतः पूरी दुनिया इसी प्रकल्प में लगी हुई है। लेकिन शास्त्र बताता है अहित सवय पुंसो परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतहता यह आत्मा सुप्रसिद्धि। यदि आप सवय पुंसो परो धर्म, ऐसे धर्म का पालन करना, यतो भक्तिर अधोक्ष, जो अधोक्षज के प्रति, जो भगवान के प्रति भक्ति का उद्दीपन करे, और कैसी भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता भक्ति, जो कि बिना किसी हेतु के, बिना किसी रुकावट के जब हम भक्ति करते हैं, तब वास्तव में वो हमें सुप्रसिद्धि, वास्तविक आनंद दे सकती है, बिल्कुल स्पष्ट कर देता है श्रीमद् भागवतम। और जब हम नित्यम भागवत श्रवण करते हैं तब हम इस, नहीं तो हम भी बार बार भक्ति में आने के बाद भी भूल जाते हैं, हमें भी लगता है कि यार ऐसे भी आनंद की प्राप्ति हो सकती है, ये प्राप्त कर लूँ तो शायद खुश हो जाऊँ, ये पदवी मिल जाएगी तो खुश हो जाऊँगा, ये सम्मान मिल जाएगा तो प्रसन्न हो जाऊँगा मैं, ये मिल जाएगा, तो इसलिए ये बार बार याद दिलाना ही पड़ता है हम सबको भक्ति में आने के बावजूद भी। ये क्योंकि माया का प्रभाव इतना शक्तिशाली है और पूरी दुनिया एक अलग दिशा में ही जा रही है ना, तो इसलिए ये बार बार प्रभात, इसलिए कहते हैं नित्यम भागवत सेवा। तो ये भागवत में आने का, एक दूसरे के भक्तों के संग का यही सबसे बड़ा लाभ है कि बार बार याद दिलाते रहते हैं। कभी कोई दिखता है हमें भक्त कहीं जा रहा है, या हम कभी किसी जा रहे हैं तो भक्त लोग बताते हैं अरे भैया तुम क्या सोच रहे हो इसमें आनंद मिल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये नाम जप कर, कथा श्रवण कर, कीर्तन कर, वहीं वास्तविक सुख है, वहीं वास्तविक सुख का अनुभूति है। तो ये बड़ा अनिवार्य है बार बार हम सबको एक दूसरे को याद दिलाना इस बात को। तो जैसे ही जो है भगवान श्री कृष्ण ने सबको जागृत किया, सब फिर भगवान विचार कर रहे थे कि भैया अब इसने तो वैसे ही पूरे ब्रज में हाहाकार तो मचा दिया था, उस लेक के आसपास कोई जा नहीं रहा था और इतना विषैला था वो जल, तो अभी भगवान ने सोचा कि भैया अभी तो हद ही कर दी, मेरे गोपों को इत्यादि गायों को भी बेहोश कर दिया इसने, तो अभी तो थोड़ा इसको मजा चखाना पड़ेगा कालिए को। तो बड़ा भगवान जो भी करते हैं बिल्कुल आनंद के रूप में करते हैं, बिल्कुल आनंद स्वरूप हैं सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप आनंद घन है भगवान। तो जो भी कार्य करते हैं उसमें दिव्य आनंद की जो है अनुभूति होती है। तो वहाँ कालिया की विशाल सर्प था, 101 उसके फण और हजारों फण थे, 101 प्रमुख फण थे, और ऐसा उसका विषैला था कि जब वह जब सांस भी लेता था तो उसमें भी पूरा गर्माहट पूरी निकलती थी, और विषैला जो है पूरा जल विषैला हो गया था। ऐसा था कि उसमें क्या रिएक्शन होता था, वो कहते हैं ना केमिस्ट्री की लैब में जब वो कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं तो पानी बॉयल करने लग जाता है, तो एक तरह से कई कई स्थानों पर पानी बॉयल कर रहा था, और कई कई स्थानों पे जब हवा चलती थी घर्षण होती थी तो उसमें आग भी लगी थी कई स्थानों पर, ऐसा भीष्म दृश्य था। और वर्णन है कि कोई भी गलती से कोई पक्षी भी उधर से चला जाए तो वो भी गिर जाता था। वो कौन सा पहले कुछ तो था ना ऐसा बर्मुदा ट्रायंगल, या कुछ तो वैज्ञानिक लोग बताते थे कि कुछ तो कोई भी आया तो वो नीचे खींचा जाता था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था कि कोई भी ऊपर से पक्षी भी गया तो उसकी फ्लाइट लैंड हो जाती थी वहीं, और कोई भी जीव नहीं थे उस तालाब में, केवल कालिया और उसका परिवार बस, बाकी जो भी विषैले लोग सब एक साथ थे वहाँ पर, और कोई रह नहीं पाता था वहीं, तो सांप और सांपों का पूरा परिवार और कोई नहीं था, और आसपास में केवल एक कदम्ब का वृक्ष था। भगवान को कदम्ब बहुत प्रिय है क्योंकि कदम्ब के फूलों का जो रंग है वो श्री राधा रानी के जो है रंग से मिलता है। माधव गोपाल पुआए तो मुझे वो भगवान का स्मरण हुआ था। तो भगवान श्री राधा रानी का जो है जो स्वरूप है वो कदम्ब के पुष्प के समान है, इसलिए भगवान को कदम्ब बहुत प्रिय। तो भगवान को कोई भी चीज़ जो राधा रानी का जो स्मरण कराए वो बहुत प्रिय, और कृष्ण को कोई भी चीज़ जो राधा रानी का स्मरण कराए उनको बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से जो है तो वहाँ पर वो कदम्ब का वृक्ष था जो केवल जीवित था। गरुड़ जी ने वहाँ पर थोड़ा अमृत डाल दिया था पहले ही, और महाराज श्री बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि उस कदम्ब के वृक्ष की बड़ी तीव्र इच्छा थी कि मैं कब भगवान की सेवा करूं। महाराज बताते हैं कि दैट एंटिसिपेशन फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू प्लीज गुरु एंड कृष्णा प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द नेगेटिविटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ व्यक्त कर रहे हैं महाराज श्री, बता रहे हैं कि एंटिसिपेशन फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू प्लीज गुरु एंड कृष्णा की आतुरता तीव्रता श्री गुरु और श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न करने की हमें इस भौतिक जगत की जो भी नेगेटिविटी अर्थात बहुत जो भी कलमश हैं उनसे हमारा संरक्षण कर सकते हैं। तो ये हमारा रक्षा कवच है बेसिकली, होता है ना एक रक्षा कवच होता है ना कोई भी चीज़, जैसे युद्ध में जाते हैं तो रक्षा कवच, तो ये एक भौतिक जगत भी एक युद्ध भूमि के समान ही है। पूरी माया का हम सब पे जो है एकदम प्रहार हो रहा है, अनेक अनेक हमारी सब इंद्रियों को अपनी दिशा में खींच रही हैं भौतिक जगत। तो जो रक्षा कवच है वो है हमारा श्री गुरु और श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न करने की जो आतुरता है वो हम सब हमें इन कलमशों से हमें बचाएगी। तो ये रक्षा कवच हम सबको हमेशा पहन के रखना चाहिए, वो आतुरता ईगरनेस टू सर्व श्री गुरु एंड कृष्णा, जब ये हमारे उसमें रहेगा हमारे सब इंद्रियों में यही रहेगा चिंतन कि कैसे मैं श्री गुरु और श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहूं, तब हम इस भौतिक जगत के कलमशों इस भौतिक जगत के प्रहारों से बच पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण चढ़ गए उस कदम्ब के वृक्ष पर, अपनी जो है कमर बंद कर ली, धोती को ऊपर ले लिया और बाजुओं को करते हुए उस ऊपर से कालिया जो दह थी उसमें भगवान ने अपना क्या बोलते हैं पूरा छलांग लगाई, जंप लगाई, और ऐसी तालाब जलाशय जिसमें कोई जाना नहीं चाहता था, दूर दूर तक कोई नहीं था, भगवान उसमें उस जलाशय में छलांग लगा दी। और जैसे ही भगवान छलांग लगा दिए वो पूर्ण जलाशय पवित्र हो गया, पूर्ण जलाशय, जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ उस जलाशय में वह जलाशय पूर्ण शुद्ध हो गया। तो हमारा हृदय में भी जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो वे पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं। केवल भगवान को छलांग लेने के लिए हमें अवसर देना चाहिए, बाकी भगवान नाम के माध्यम से। और कालिया ने तो कभी ऐसा अनुभव ही नहीं किया था क्योंकि उसके घर में कोई आया ही नहीं था। अतिथि देवो भव होता है, लेकिन उसके घर में कोई अतिथि आता ही नहीं था। आएगा कैसे, आएगा तो एंटर करते ही मर जाएगा, तो कोई देव कोई आता ही नहीं था। तो पहली बार कोई अतिथि उसके घर में आए तो वो भी बड़ा घबरा गया, और भगवान भी जब एंटर किए तो बड़ी आवाज़ किए और पूरा जो है लहरें दूर दूर तक फैल गई। भगवान जब जाते हैं तो वह बड़ा कालिया भी घर से बाहर निकल कर आया और पूरी उसकी आँखों से लाल आँखें और रोष और पूरा मुंह से उसके जो है विष निकल रहा था पूरा बाहर। और भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल आनंद से स्विमिंग कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, विहार कर रहे थे और तैरते हुए। और सुंदर रूप का जब कालिया ने दर्शन किया, हम यहाँ पर पहले चर्चा कर रहे थे भागवत में कि मंद इंद्रियाँ, अभी उसकी मंद नहीं, मंद की भी बाप थी इंद्रियाँ, बिल्कुल ही ढकी हुई थी इंद्रियाँ, मंद इंद्रियों से प्रभुपाद कह रहे थे कि हम समझ नहीं सकते भगवान की सुंदरता। खालिया की तो बिल्कुल मंद की क्या बोलते हैं पराकाष्ठा थी, बिल्कुल ढकी हुई थी इंद्रियां, कुछ दिखाई नहीं, देख कर भी नहीं देख रहा था, है ना। हालांकि कोई भी सुंदर बालक को देखकर तो कोई भी मोहित हो जाता है, कोई भी आकर्षित हो जाता है, कोई भी छोटा बच्चे को देखो खेलते हुए तो वो आकर्षित हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पर तो कालिया को भगवान श्री कृष्ण को देख कर भी उसको कुछ नहीं हुआ, हालांकि उसका और द्वेष बढ़ गया क्योंकि हृदय में केवल द्वेष ही था। और भगवान श्री कृष्ण तो बिल्कुल आनंद पूर्वक तैर रहे थे उसमें, और कई बार अपने मुंह में उस जल को लेते और पिचकारी मारते तो और उसको बिल्कुल क्या बोलते हैं इंसल्ट कर रहे थे और उसका अपमान कर रहे थे इंद्रिय का। और तभी काली को भी और क्रोध आया, उसने अपनी जो है फनों को उठाया और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य छाती पर जाके प्रहार कर दिया और बिल्कुल घेर लिया। तो शिला कवि करणपुर वर्णन करते हैं कि ऐसा सुंदर प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि पूर्ण चंद्रमा को काले किसी वृक्ष की शाखाओं ने घेर लिया हो। बड़ा सुंदर उपमा देते हैं कि किस प्रकार से एक पूर्ण चंद्र को जो है काली शाखाओं ने घेर लिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और कुछ समय के लिए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ भगवान के जो है दिव्य देह में कोई गति नहीं थी, कुछ मूवमेंट नहीं था। तो जो है सब गोपगण जो देख रहे थे, जो गायें इत्यादि जो देख रहे थे, और वे सब जो है क्रंदन करने लगे, रोने लग गए और उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था क्या करें किस प्रकार से। और बहुत सारे तो इस भगवान के विरह में कि शायद कृष्ण को कुछ हो गया है उसमें अचेतन हो गए, बेहोश होकर वहाँ पर गिर गए। और उनके क्रंदन सुन के और भी वन के पशु और पक्षी सब वहाँ पर आ गए, और उस समय कुछ नहीं हुआ क्योंकि तब तक ये कालिया का जो है जल, दह का जल पवित्र हो चुका था भगवान के। और वहाँ पर जो भी पशु पक्षी बंदर इत्यादि वो सब भी वहाँ पर आ गए, अन्य गोपगण भी आ गए, और साथ ही साथ भी उस समय भगवान की इच्छा के अनुसार सब क्या बोलते हैं अपशगुन वहाँ पर होने लग गए, अर्थक्वेक होने लग गया, और क्या बोलते हैं वो मीटियोर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मीटियोर तारा, टूटता हुआ तारा, हाँ जी अश्नी, हाँ टूटता हुआ तारा दिखाई देने लगा। कल शायद कुछ भक्त लोग देख रहे थे शाम को, टूटता हुआ तारा दिख रहा था, कुछ अपशगुन के लक्षण पता नहीं। और इस प्रकार के जो है अनेकों प्रकार के अपशगुन वहाँ पर प्रदर्शित हो गए। और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि आचार्यगण बताते हैं कि भगवान ने अपशगुन क्यों किए, ये भगवान चाहते थे कि भाई सब ब्रजवासी आ जाएं, ये भगवान का बुलाने का तरीका था, सब लोग वहाँ आ जाएं और जो मैं दिव्य नृत्य करने वाला हूँ उसका परफॉर्मेंस में सब लोग होने चाहिए, सब ब्रजवासी गोपीगण गोपांगण सबको बुलाने के लिए भगवान ने यह लीला की थी। तो बांसुरी बजा के भी कई बार भगवान बुलाते थे, शायद वो पानी में बांसुरी बुलाना, ऑफकोर्स भगवान तो बजा ही सकते हैं लेकिन उस समय जो है पूरे जकड़े हुए थे, तो भगवान ने सोचा चलो अपशगुन के माध्यम से ही सब ब्रजवासियों को सब गोपों को वहाँ पर एक तरह से आमंत्रित किया, सब लोग जो है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरण कमलों का देखते देखते वहाँ पर पहुँच गए। बड़ा ब्रज की जो है हम यहाँ पर भगवान के चरण कमल के ध्यान करने पर चर्चा कर रहे हैं, और वास्तव में जो है श्री ब्रज भूमि और इस धरती की जो वास्तविक धरोहर है वो है श्री भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह। ये वास्तव में इस धरती की जो है क्या बोलते हैं वेल्थ, जो धरोहर है वो है भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह। सब लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि बलराम जी नहीं गए, बलराम जी थोड़े बड़े थे लेकिन सबको बलराम जी पे श्रद्धा थी। ये कृष्ण चंचल थे, कहीं भी जाते रहते थे। यशोदा मैया हमेशा बलराम जी तो कहती थी कि तुम इसका ध्यान रखना, कहीं भी जाए बलराम जी तुम साथ में रहना, दूर जाने नहीं देना, पनदी में जाने मत देना, पेड़ पे चढ़ने मत देना। तो बलराम जी भी नहीं गए थे तो यशोदा मैया और सबको बहुत ज़्यादा चिंता हो गई थी कि अभी तो बलराम जी भी नहीं गए हैं। और इस प्रकार सब जब वहाँ पर पहुँचे तो सब लोग बहुत ही जो है चिंतित थे, और यशोदा मैया नंद बाबा इत्यादि सब जाना चाहते थे उसी काली हृदय में, और श्री कृष्ण को पास अपने जाना चाहते थे। और बलराम जी पूरे समय मुस्कुरा रहे थे। उनको था कि भाई ये तो कृष्ण है, सबको कृष्ण को तो कोई मार नहीं सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता, वो तो अजित हैं। केवल एक ही तरीका है जो हमने शुरू में चर्चा किया उनको जीतने के लिए, तो शक्ति से तो जीत नहीं सकते। तो कालिया जी के पास भक्ति तो इस समय तक नहीं थी तो संभव नहीं था जीतना। तो बलराम जी इसलिए हंस रहे थे और विचार कर रहे थे कि भाई मैं शेषनाग के रूप में आता हूँ तो मेरे साथ तो खेलते नहीं, ये छोटे से पानी के सांप के साथ खेल रहे हैं। तो बलराम जी और थोड़ा जो भक्त थे वहाँ पर ब्रजवासी थे उनका भी मूड हल्का करने के लिए, और एक एक करके भगवान श्री बलराम जी सबको रोक रहे थे, अपने आप को विस्तार करके, किसी को बोल कर, किसी को पकड़ कर, अनेक प्रयासों से जो है। और सब गोपीगण भी बहुत, मतलब पूरा ब्रज वहाँ इकट्ठा हो गया था, छोटा बच्चा एक साल से बच्चे से लेके सबसे वृद्ध व्यक्ति जो भी उसकी आयु होगी सब वहाँ पर एकत्रित हो गए थे। तो पूरा डांस के लिए सब क्या है ऑडिटोरियम पूरा भर गया था अभी। उस ओपन एयर ऑडिटोरियम ऑन द हाँ जी हाउसफुल था, हाउसफुल नहीं सब हाउस एम्प्टी थे, मतलब हाँ एक दृष्टिकोण से हाउसफुल था लेकिन ब्रज के सब घर एम्प्टी थे, हाउस एम्प्टी भी था और हाउसफुल भी था, तो दोनों था। और भगवान, ये भगवान इस विरह की जो है भावना को भक्तों में उनकी और जो है स्मरण तीव्रता से स्मरण को बढ़ाने के लिए ये लीला करते हैं, क्योंकि जैसे बहुत भूख लगी और फिर कुछ प्रसाद में फीस्ट हो तो बहुत अधिक आनंद आता है। तो इस लीला से पूर्व भगवान एक विरह की लीला किए ताकि सब लोग थोड़ा सा विरह में आए और फिर जब इस दिव्य लीला का जो अनुभव करेंगे तो और अधिक आनंद आएगा। तो करीब 2 घंटे तक भगवान कालिये की क्या बोलते हैं उसमें हाँ जी फनों में रहे, फन नहीं पकड़ में रहे, हाँ जकड़ में रहे, पकड़ में रहे। और हमारे पास अभी 5 मिनट हैं तो हम लोग फटाफट भगवान को निकाल देंगे, ज़्यादा समय नहीं रखना चाहिए, और क्योंकि भक्तों को बड़ा कष्ट होता है, जब ब्रजवासियों को बहुत कष्ट हो रहा था और जब देखा भगवान ने कि बहुत अधिक कष्ट हो रहा है ब्रजवासियों को, भगवान को कोई कष्ट नहीं था, वो तो आराम से बैठे थे, बिल्कुल खड़े थे वहाँ, और लेकिन जब देखा कि ब्रजवासी बहुत अधिक ही हो गया कष्ट, अभी टू मच हो गया, अभी नहीं सहन कर पाएंगे, तो भगवान ने अपने शरीर का विस्तार किया। और उस समय भगवान अपना क्या बोलते हैं, जो लोग उठ गए उस समय, जो काफ़ी लोग बेहोश थे, जो लोग गए थे, भगवान ने अपने सुंदर मुख कमल से क्या बोलते हैं उसको साइड लाइन ग्लॉन्स अर्थात कटाक्ष, हाँ तिरछी कटाक्ष से देखा, आइकॉनिक ग्लैंस ऑफ कृष्णा, साइड लॉन्ग ग्लैंस, सब हीरो लोगों का कुछ होता है ना आइकॉनिक स्टेप होता है कुछ एक, तो भगवान का भी एक है साइड लॉन्ग ग्लैंस जो भक्तों को दिव्य आनंद देता है। तो उस आइकॉनिक ग्लैंस जब भगवान ने किया सब ब्रजवासियों के प्रति और तुरंत उसके जकड़ से निकल गए, तब खालिया को भी समझ में आ गया कि यार ये कोई साधारण बालक नहीं है, पहले तो यहाँ आया फिर मेरी जकड़ से निकल गया, ये कोई साधारण नहीं है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ आ रही थी उसको। लेकिन फिर भी इतना क्रोध, इतना विष भरा था अंदर कि वह फिर से प्रयास कर रहे हैं भगवान को पकड़ने का, और भगवान भी गोल गोल घूम रहे हैं, उसको थका रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और उसकी पूरी आंखें एकदम लाल थी मुख से विष, और पूरे उसके नासिकाओं से भी पूरा विष निकल रहा था। और लेकिन जैसे ही भगवान जब उसको थका रहे थे तो सब देवतागण भी बड़े आनंदित हो गए। पहले वैसे उनको भी देवताओं को भी डर लगता था कालिया से, नहीं रूप ऐसा वर्णन है, देवताओं को भी डर लगता था कालिया से। तो वो लोग भी जब देखे कि अरे अभी तो भगवान जीतने लग गए हैं, तो वो लोग भी करताल लेके और मृदंग और भेड़ियाँ लेके और शंख बजाने लग गए। और ये आवाज़ सुन के सब ब्रजवासी जो बेहोश थे वो भी उठ गए, अरे ये क्या हो गया, ये तो कुछ अलग ही है अभी दृश्य। और बहुत प्रयास कर रहा था कालिया बारंबार श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने का, लेकिन बिल्कुल थोड़े से एक स्प्लिट सेकंड से बचते जा रहे थे भगवान। बचते मतलब भगवान को कौन मार सकता है, कौन पकड़ सकता है, लेकिन ऐसा उसको अनुभव हो रहा था कि बस अभी मैं पकड़ लूँगा, बस अभी, बस ये एक थोड़ा समय मेरी स्पीड और होती तो शायद मैं पकड़ लेता, थोड़ा एक्सेलरेशन और देने लग गया अपने आप को और बढ़ा रहा था अपनी गति को। लेकिन कृष्ण तो की गति को तो कोई पार नहीं कर सकता। और भगवान ने फिर जब फिर से एक बार गोपियों की तरफ अपना आइकॉनिक साइड लॉन्ग ग्लैंस दिव्य कटाक्ष से देखा, और तब भगवान ने जो है एक लहरें निर्माण की और उसके ऊपर जंप करके, जैसे वो सर्फिंग करते हैं ना सर्फिंग, वैसा उस तरह से उस पर जंप करके कालिया के एक फण पर चढ़ गए और नृत्य आरंभ कर दिया। दिव्य नृत्य, ऐसा नृत्य ना आज तक हुआ है ना होगा, इस दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ नृत्य करने वाले भी उस नृत्य को इमिटेट नहीं कर पाएंगे। हालांकि जब ये नृत्य आरंभ किया तो सब देवतागण वहां पर आ गए, इंद्रदेव मृदंग लेकर आ गए, नारद मुनि अपनी वीणा लेकर आ गए, कुछ और कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट सब लोग लेकर आ गए। लेकिन जो अप्सराएं थी वो भी नृत्य करने लगे, लेकिन वो भी इनके साथ भगवान के साथ मैच नहीं कर पा रहे थे। वो लोग प्रयास कर रहे थे कि हम लोग शायद मैच कर लें, दे आर एक्सपर्ट्स, वो लोग तो बिल्कुल शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य में भी पूर्णतः निपुण है, किंतु वह भी भगवान के उस नृत्य के साथ क्या बोलते हैं रिदम लय नहीं रख पा रहे थे। और फिर बाद में उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हम अपना नाचते हैं, उनको अपना नाचने दो, ठीक है, अभी वो कहाँ प्रयास करेंगे भगवान के साथ लय मैच करने में। तो वो भी आनंद के साथ नाच रही थी और कृष्ण अपना नाच रहे थे। और महाराज जी वर्णन कर रहे थे कि वो इस प्रकार से जब एक फंड से दूसरे फंड पे जाते थे, जब वो बीट चेंज होती थी, जैसे होता है ना, तो जैसे ही बीट चेंज होती तब दूसरे फंड पर प्रहार करते थे, और दूसरे फंड में जो भी फंड से वो प्रहार करता था उस पर, तो ऐसा कहीं भी कुछ ब्रेक नहीं होता था, ब्रेक डांस जैसा नहीं था, ये दिव्य भगवान का जो नृत्य था कहीं ब्रेक नहीं, बिल्कुल स्मूथ डांसिंग हो रहा था, बिल्कुल कालिया का प्रहार, शायद ये सब म्यूजिक व्यूजिक की वजह से, कालिया भी म्यूजिक के हिसाब से प्रहार कर रहा होगा, नहीं ऐसा नहीं वर्णन है, बट भगवान का जो है नहीं, वो क्या है, म्यूजिक हो तो एक साउंड का एक चेतना पर प्रभाव होता ही है। यहाँ पर बहुत सुंदर कोकिला वन है, इसका नाम स्वर मंदिर है, कल वहाँ पर मैं अनुभव कर रहा था, बड़ा सुंदर है, आप लोग जो नहीं गए हैं जाके अनुभव कर सकते हैं कि कैसे है साउंड का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर कालिया जी भी, कालिया अभी जी कहना आरंभ करना पड़ेगा, भक्त बनने जा रहे हैं, तो कालिया जी यहाँ जब आ गए तो बड़ा सुंदर नृत्य था, और सब गोपगण भी जो भी उठ के वो भी नाचने लग गए, कोई वो क्या बोलते हैं बिगुल बजाने लग गए, कोई बांसुरी बजाने लग गए, कुछ नृत्य करने लग गए, और जो वरिष्ठ गोपगण थे उनको वो भी आनंदित थे ये नृत्य देख के, लेकिन फिर भी डर लग रहा था, वात्सल्य के कारण डर लग रहा था, कहीं सच में बाद में वापस काट ना ले कृष्ण को। तो एक वास्तव उनमें वो एक दोनों भाव थे। और तो इस प्रकार से भगवान का जो है, वास्तव में भगवान ब्रजवासियों को आनंद करने के लिए लीला कर रहे थे, देवतागण थे वो लोग भी देख रहे थे, लेकिन भगवान प्रमुखतः ब्रजवासियों के आनंद के लिए इस नृत्य की प्रस्तुति किए थे। ऐसे बढ़िया नृत्य संभव नहीं है, सब लोग बहुत आनंद में थे, लेकिन हम समझ सकते हैं जिसके सिर पे पड़ रही थी उसको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या बोलते हैं बिजली गिरती है ना, जैसे हाँ थंडर बोल्ट, बिजली वज्रपात हो रहा था उसके शरीर पर, और उसका पूरा जो है जो त्वचा थी पूरी फट गई, बिल्कुल स्मूथ सी त्वचा होती है, वो पूरी त्वचा उसकी छिन्न भिन्न हो गई, फट गई, और बहुत विशाल क्वांटिटीज में पूरा जो है विष उसके मुख से बाहर निकल रहा था। और जब पूरा विष निकल गया, उसके पूरे शरीर का जो विष निकल गया, उसके पश्चात जो है खून की उल्टियां होने लग गई थी उस प्रकार से। और धीरे 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 जब पूरा वो क्या बोलते हैं परास्त हो गया था, पूरा उसका शरीर टूट गया था एक तरह से, सब विष निकल गया, सब खून भी निकल गया, होमोग्लोबिन भी कम हो गया होगा काफ़ी, पूरा जो है तो जब बिल्कुल थक गया, वीकनेस हो जाती है ना जब कम हो जाए, खून की कमी हो गई थी, इतना वो थक गया था, पूरा शरीर टूट रहा था, तब उसको याद आ रहा था, अरे यार मेरी पत्नियां कहा करती थी कृष्ण वास्तव में भगवान है, उनकी भक्ति करनी चाहिए। कई बार ऐसा ही होता है हम सबको जीवन में, गुरुवर्ग वैष्णवों से हम श्रवण करते हैं लेकिन जब माया की लात पड़ती है क्या करें, इस संसार में ऐसा ही है, बिना लात का हम लोग समझते नहीं हैं, क्या करें, लातों के भूत बातों से ही मानते हैं। तो कई बार हम लोग अपने जीवन में भी अनुभव किया है, सब कुछ अच्छा चले तो भजन में तीव्रता नहीं आती है, जब भगवान कभी लात मारते हैं या भगवान या माया के रूप में जब लात पड़ती है तब भगवान के नाम का आश्रय और अधिक तीव्रता से लिया जाता है। तो खाली अभी तब उनको याद आ रही थी सब कथाएं जो सुनी थी, जो भी भागवत कथाएं खालिया की पत्नियां शायद रोज सुनाया करती होंगी, तो जो भी उसने क्लासेस अटेंड की थी सब नोट्स याद आ गए उसको। तो सब अंदर तो जा ही रहा था, केवल ध्यान नहीं था। तब वह बिल्कुल हतोत्साहित होकर भगवान के चरणों का स्मरण करके, जो उसके सिर पर धारण किए हुए थे उनका स्मरण करके, बिल्कुल नम्रता पूर्वक शर्म के द्वारा, बिल्कुल प्रेम से, जो भगवान से अभी बोलने की तो शक्ति नहीं थी, बोल नहीं पा रहा था, लेकिन अपनी आँखों से जो है अपने आप को भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा था। और तभी वहाँ नागपत्नियाँ आ जाती हैं, तो ये देखिए बड़ा सुंदर सपोर्ट था पत्नी का उनको, बहुत प्रयास भी किए थे प्रचार का, और जब वे वहाँ पर आ गई नागपत्नियाँ तो भगवान के सामने बड़ी सुंदर भागवत में प्रसंग है, भगवत बहुत ही सुंदर जो है नागपत्नियों की प्रार्थनाएं हैं जो भगवान के समक्ष अर्पण करती हैं। तो पहले तो विचार कर रही थी जब वह दुष्ट था कि चलो मर जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब देखा उन्होंने कि इतना लात खाने के बाद अभी ये सुधर गया है तो प्रार्थना करने लगी कि भगवान इसको क्षमा कर दीजिए। बहुत ही जो है सुंदर प्रार्थनाएं कि ऐसा परम सौभाग्य ब्रह्मा जी भगवान शंकर इत्यादि को भी नहीं प्राप्त होता, वह भी याचना करते हैं आपके चरण रज को प्राप्त करने की, और यहाँ चरण रज के साथ साथ स्वयं चरण उसके सिर पर धारण हो गए, हम नहीं समझ सकते इससे अधिक सौभाग्य कालिया का क्या हो सकता है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर जो है स्तुति करती हैं और बताती हैं कि वैसे भी ये तो तमोगुण में इसका जन्म हुआ है, इसका स्वभाव ऐसा ही है, आप इसको माफ़ कर दीजिए। और भगवान भी जब हैं उनकी सुंदर प्रार्थनाओं को सुनते हैं और कालिया का देखते हैं कि भाई भाव को समझ जाते हैं कि ये अब समझ गया है, तब भगवान भी जो हैं उसको क्षमा कर देते हैं। और कालिया भी बड़ी सुंदर प्रार्थनाएँ करता है लेकिन भगवान प्रमुखतः उसकी पत्नियों की प्रार्थनाओं से प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी अनुकंपा उस पर दिखाते हैं और तुरंत उसका जो है शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल, और विष रहित भी हो जाता है, स्वस्थ एट द सेम टाइम शुद्ध। तो हम लोग आरंभ किए थे हृदय का शुद्धिकरण से, किस प्रकार से जो व्यक्ति शुद्ध होना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये तरीका बता रहे हैं आचार्यगण। बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कि जिस प्रकार से इस कलयुग में जैसे भगवान उसके फनों पर नाचे, उसी प्रकार से जब हम इस कलयुग में अपनी इस जिह्वा के द्वारा, जो कि कुछ दृष्टिकोण में नहीं सांप जैसी हुआ है, नहीं स्लिपरी है, बिना हड्डी के है, स्लिपरी, तो जब हम भगवान नाम का उच्चारण करते हैं तो उस समय भगवान उस पर नृत्य करते हैं, भगवान स्वयं वहाँ पर अवतरित होकर नृत्य करते हैं। जब हम भक्ति भाव से जब हम नाम का उच्चारण करते हैं तो भगवान हमारे जिह्वा पर जो है नृत्य करते हैं और हमारे हृदय का जो है पूर्ण कल्मश है, जो विष है हमारे अंदर, हम सबके अंदर अंदर कालिया बैठा हुआ है, तो जब धीरे धीरे जब वो लातें पड़ती हैं तो वो कालिया का जरूपी जो हमारे अंदर जो हृदय का जो विष है वो धीरे धीरे बाहर आता रहता है और हम फिर अंततः जो है भगवत कृपा को हम प्राप्त करते हैं। तो भगवान नाम और भगवत कृपा, भक्तों की कृपा, भक्त लोग जब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे नागपत्नी, अर्थात कोई भी भक्त जो हमारे लिए प्रार्थना करे भगवान से, तो ये संदर्भ में यही जो है वास्तविक कलयुग के लिए शुद्धिकरण का मार्ग है, सबसे सरल मार्ग। भगवान जैसे हमने शुरू में कहा, श्रवण करना, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, और भगवान का नाम जप करना। ये बिल्कुल कितना, 2-2.5 इंच का ही होता है ना जुबान, 2-2.5 इंच की ये जुबान से हम जो है भगवत धाम जा सकते हैं। इसमें बड़ी शक्ति है, दिखने में बड़ी छोटी सी लगती है बड़ी छोटी सी, लेकिन हाथ तोड़ भी सकती है, लोगों के भी हाथ तोड़ सकती है, जोड़ भी सकती है, और हमें इस भौतिक संसार से पार भी ले जा सकती है। तो भगवत भगवान द्वारा दिए गई इस जिह्वा का जो है हम सबको बहुत लाभ उठाना है, भगवत प्रसाद प्राप्त करके, भगवान नाम का जो है उच्चारण करके हम सदगति को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को परिशुद्ध बना सकते हैं। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।